সনাতন ভট্ট রঘুনাথ শ্রীজীবী গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ এছয় গোসাই করি চরণবন্দন যা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ মহাভাবস্বরূপতম কৃষ্ণপ্রিয়া বরিয়সি প্রভক্তি প্রদে দেবী রাধিকেতাং নমাম্যহম রাধে বৃন্দাবনাধীশি করুণামৃতবাহিনী কৃপয়া নিজপদাব্জ দাস্যং মহ্যম প্রদীয়তাম বন্দে নন্দ ব্রজেস্ত্রীণাম পাদরনুমভীক্ষ্ণশ যশাং হরি কথোদ্গীতম পুনাতি ভুবনত্রয়ম জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াল প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে বলো শ্রী গুরুজি মহারাজ কি জয় গুরু পরম্পরা কি জয় অনন্ত অনন্ত কোটি বৈষ্ণববৃন্দ কি জয় সপার্ষদ গৌরহরি কি জয় গৌর নিত্যানন্দ প্রভু কি জয় জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রা সুদর্শন জীব কি জয় ভক্তবিঘ্ন বিনাশন কারিণী সিংহদেব কি জয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয় সর্ব অবিষ্টপ্রতা গিরিরাজ গোবর্ধন জীব কি জয় গোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন জীব কি জয় ব্রজমণ্ডল ধাম কি জয় ব্রজবাসী ভক্তবৃন্দ কি জয় ব্রজেশ্বরী মদেশ্বরী প্রণেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানী কি জয় ব্রজদেবীগণ কি জয় সমবেত গৌরভক্তবৃন্দ কি জয় গৌরপ্রেমানন্দী হরি হরি শ্রীশ্রী প্রভুপাদ শ্রী ঠাকুর উপদেশামৃত ইহা পর প্রভুপাদ শ্রী ঠাকুর বর্ণন করতে হ্যাঁ কীর্তন করতে হ্যাঁ কি যা পর কৃষ্ণ কীর্তন ভগবান কে নাম গুণগান কীর্তন নেই হতা ও স্থান হ্যাঁ কেবল রেগিস্তান নেই ও শমশান হ্যাঁ হ্যাঁ পর সব দুর্ভাগাও কা স্থান কতনা ভি উপায় করলে যদি ও মঠবাসী আশ্রমবাসী নেই বন সকতা বিগত শ্রম আশ্রম ও স্থান মে শ্রমই শ্রমে শান্তি নেই কিউকি ভজনকে অভিনয় তো করতে হ্যাঁ কিন্তু সংখ্যাপূর্বক নাম গান নেই করতে হ্যাঁ প্রভাতজি কতে মঠবাসী হো চাই গৃহস্থী হো হ্যাঁ যো শ্রীমদ্ ভাগবতকে বেদ বেদান্তকে শাস্ত্রকে যো নিচোড় হ্যাঁ সার হ্যাঁ যো ভগবান কা নাম হ্যাঁ ও নাম কীর্তন যদি নেই করতে হ্যাঁ তো ঘর গৃহস্থী ভি বড় দুঃখদায়ী আর আশ্রম সবসে বড় কলেশ কা কারণ বনেগা হ্যাঁ সবসে সরদর্দি ও ঝঞ্ঝাট वहीं उपस्थित होगा। हाँ, यदि सब मिलकर के हरि कीर्तन करते हैं और स्वाभाविक हरि सेवा करने की वृत्ति जागृत होगा और मठ में आश्रम में जो लोग नाम कीर्तन करते हैं उनको यदि सम्मान आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो नाम भजन में रुचि वर्धित होगा। और यदि हम बहिर्मुख आत्मसर्जन कुटुंबोमुख के सेवा लेकर के हम मतवाला हो जाते हैं, हरिनाम नहीं करते हैं, तो बड़ा दुर्वस्था। वो आत्मीय कुटुंब परिजन सजनाक्य केवल दस्यु नहीं, वो हमारे लिए घातक है। न तो हम उनका उपकार कर सकते हैं, न हमारा वो कल्याण कर सकते हैं। इसलिए सभी मिलकर के यदि हरिनाम कीर्तन करते, नाम परायण होते हैं, तो नाम परायण गौरांग महाप्रभु राधा गोविंद मिलित तनु वो आकर के सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेंगे। नाम सेवा में उदासीन हो गया कि नहीं, तो सब हमने खोया है, कुछ मिलने वाला नहीं है। कहते हैं कविराज गोस्वामी, यत सब छड़िया वर्णाश्रम धर्म अकिंचन हैया कृष्णर शरण। यह शरण का मतलब है भगवान का नाम कीर्तन, नाम का स्मरण सदा बने रहे। यदि नाम स्मरण नहीं हुआ, नाम कीर्तन नहीं हुआ, तो बेकार व्यर्थ परिश्रम करने से क्या लाभ होगा? भूसा कूटने से दिन भर कितना भी परिश्रम करेंगे, उसका फल क्या है, क्या मिलेगा, कौन देगा? हाँ, क्यों मेहनत करते हैं, उससे क्या लाभ? इसके लिए सब साधन कृष्ण कीर्तन के सहाय होना चाहिए। हैं, जितना करेंगे बस भगवान के नाम कीर्तन के लिए ही वो लोग मदद करे तो ठीक है, और नहीं तो सूखे क्या लाभ, खा के क्या लाभ, शरीर पाल के क्या लाभ, यदि हरिनाम कीर्तन नहीं किया तो। इसके लिए प्रभुपाद जी कहते, नाम कीर्तन साधन सम्राट है। सब साधन के फल केवल भगवान के नाम कीर्तन या नाम स्मरण सदा सर्वदा बने रहे ना, तब तो हम प्रभु के निकट है। नाम और नामी अलग नहीं है, कृष्ण नाम और कृष्ण अलग नहीं है, कृष्ण और कृष्णाम अभिन्न है। कृष्ण नाम नंदनंदन है, कृष्ण नाम श्याम सुंदर है, कृष्ण नाम संकीर्तन हमारा अभिधेय है, हमारा संबंध है और प्रयोजन है। और क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, विभिन्न प्रकार भक्ति अंग हैं, किंतु सब अंग का यदि साधन किया, कैसे समझेंगे हम साधन ठीक कर रहे हैं? यदि नाम कीर्तन में रुचि हुआ तो, हाँ, यदि नाम कीर्तन में रुचि नहीं हो गया तो महा विपद है। क्या कहते हैं जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं, यद्यपि अन्य भक्ति कलौ कर्तव्य तदा कीर्तनाख्या भक्ति संयोगनव्य इत्युक्तम। सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी और हमारे सरल गोस्वामी सभी एक ही बात कहते हैं कि कलयुग में कितना भी भक्ति का अंग है, हाँ, ओ यदि कीर्तनाख्या भक्ति नहीं है, नाम संकीर्तन नहीं करते हैं, तो कोई भी फल नहीं देगा। परिक्रमा किया, दान किया, व्रत किया, तप किया, ग्रंथ पढ़ा, सब कुछ करा, यहाँ तक भागवत पाठ कर रहे हैं, किंतु नाम कीर्तन नहीं, तो कुछ भी नहीं फल देगा। यदि नाम कीर्तन है तो सफल हथेली में है। कहते हैं कृष्ण कीर्तन किसको कहते हैं? कहते हैं श्री कृष्ण प्लस संकीर्तनम, तो कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण मतलब श्री सर्वलक्ष्मी गंधर्व राधारानी, गंधर्वी का राधारानी, और कृष्ण, तो कृष्ण कौन है? ब्रजनंदन गिरिवरधारी। कहते गंधर्व गिरिधारी, ये दोनों का कृपा हो गया तो क्या होगा? बहु भी मिलित्वा यत् कीर्तनम तदेव संकीर्तनम, तब सब लोग एक तात्पर्य पर होंगे। सब लोग भगवान की कृपा होए तो बैठ करके नाम कीर्तन करेंगे, नहीं तो कोई नाम कीर्तन करेगा, कोई हंसी मजाक तमाशा करेगा, कोई वीडियो गेम खेलेगा, कोई उत्पात मचाएगा, नाम कीर्तन नहीं करेगा। क्यों? भगवान की कृपा नहीं है, हैं। इससे नाम कीर्तन का अर्थ है भगवान के नाम रूप गुण परिकर वैशिष्ट वैशिष्ट और लीला कीर्तन का नाम संकीर्तन है। जब कृष्ण के नाम कीर्तन करना शुरू कर दी तो कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप, कृष्ण के लीला परिकर वैशिष्ट सभी हमारे सामने आविर्भूत होंगे, प्रकाशित होंगे और सुंदर रूप से उनके स्नेह कृपा वर्षा बरसेगा, आदर अभ्यर्थना परिचर्या की रुचि हो जाएगा, स्वाभाविक। कहते हैं कृष्णचंद्र पूर्णतम परतत्व वस्तु और कृष्ण नित्य सेव्य हैं सबके, हम लोग सेवक हैं, कृष्ण हमारे लिए प्रयोजन है, और कृष्ण ही सबसे चेतना व्यक्ति को देने वाला, जड़ व्यक्ति को आच्छादन नहीं करने वाला, कृष्ण ही सेवा वस्तु है, उनके सेवा ही हमारा कर्तव्य है, कृत्य है। जब हम समझ जाएंगे इन बातों को तो संसार संसार करके केवल पागल नहीं बनेंगे, संसार के उपास्य नहीं ज्ञान करेंगे, हमारे संसार ही सब कुछ है, यही सार है। कहते हैं ऐसा कभी बुद्धि नहीं आएगा, यदि ऐसा बुद्धि आए ना तो क्या होगा, ऐसा ज्ञान आ गया तो नरक की रास्ता में हम अब चलने लग गए हैं, और यही सार होगा, फिर कुछ होना नहीं है। इससे ये जो आत्मा है, ये आत्मा के अपना शरीर है, इंद्रिय हैं, उनके द्वारा कृष्ण सेवा हो सकता है, किंतु ये आत्मेंद्रिय अभी कहाँ है, अभी सुप्त है। जब चेतनता मिलेगा तब तो उस आत्मा के पुष्टि के लिए तुष्टि के लिए कुछ करेंगे, अब तो जड़ में अचेतन हो चुका है, खो बैठा है, तो हम कुछ कैसे सेवा करेंगे भगवान की। कहते हैं रूपा जी, अप्राकृत इंद्रियों के द्वारा ही कृष्ण सेवा संभव है, कल्पना करने से नहीं होगा, कुछ सोच लिया, विचार कर लिया और सोचते हैं यही कृष्ण सेवा है, नहीं। कैसे समझेंगे हमारा संबंध कहाँ है, कौन हमारे हृदय को खींच करके अपने पास में पकड़ कर बांध करके रख दिया है, हाँ, संबंध ज्ञान, संबंध कहाँ है, किसके साथ। और यदि भगवान के साथ संबंध है तो दिव्य ज्ञान मिलेगा, और जड़ के साथ संबंध है तो जड़ ज्ञान मिलेगा, तो कर्तव्य हो जाएगा, निष्ठा, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है, ये पालन करना है, जड़ अभिमान आकर के बस हमें अभिभूत करेगा, ये मेरा भाई है, ये मेरा माँ है, बाप है, हैं, किंतु कितने दिन की कल्पना है, किंतु नहीं, यही बहुमानन करेंगे, हम भगवान के सेवक है, दास है, भगवान मेरा है, नहीं, ये ज्ञान नहीं, जितने है सभी प्रभु का है, सब मेरे हैं, भगवान मेरा नहीं है, भगवान मेरे हैं तो कैसे हैं, जब सब लोग के साथ मैं हूँ, सबकी सेवा करता हूँ, सब खुश है तो मैं खुश हूँ, ये जो अभिमान है यह दिव्य ज्ञान नहीं है। यदि भगवान ही हमारा आराध्य है, ऐसा विचार आ जाता है, भक्तों के अलावा मेरा कोई आत्मीय कुटुंब स्वजन नहीं है, ये मर्म मर्म में अनुभव हो तब तो मंगल होगा। दूसरे को अपना मान लिया, अपना अकेला था, तो अभी परिवार हो गया। कहाँ से आया परिवार? किसी को अपना लिया, फिर उनके साथ रहते रहते बाल बच्चेदार हो गए और उनको अपना समझ लिया। तो ये तो ये ज्ञान आत्मज्ञान उनको कर ली, किंतु ये तो दिव्य ज्ञान नहीं है। क्यों? ये तो मेरे साथ न रहेगा, न मैं रहूँगा, न जाएगा मेरे साथ, कोई साथ देने वाला नहीं है। दो दिन की धर्मशाला में कोई आकर के मिल गए, सोचा ये मेरा हो गया। चिड़िया पेड़ में बैठ गया, गुस्सा बना ली, तो मेरा हो गया। तो ऐसे ही केवल अभिमान है, कहते हैं ये दिव्य ज्ञान नहीं है। यदि मंत्र ले भी लिया, दीक्षा ले भी लिया है, किंतु वो जिस नरक में उसी नरक में ही, अंधकार में रह गए, पार नहीं कर सकते, उससे आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि कृष्ण को अपना आराध्य और अपन जन तो गिना नहीं, कृष्ण ही मेरा आत्मीय है, ये ज्ञान तो नहीं आया, किंतु ये ज्ञान वैष्णव के पास है, वो इसके इसको प्रयोजन समझते हैं। भगवान से हमारी जड़ प्रतिष्ठा, अनात्मियों को आत्मीय ज्ञान, ये उनके निकट नहीं है और न वांछा करते हैं। नहीं तो हम क्या करेंगे? हरिनाम कर रहे हैं, माला मंत्र जप कर रहे हैं, व्रत आदि कर रहे हैं, कोई दुखी हो गया, कष्ट में है, तो हम भगवान से कहेंगे प्रभु आप इनकी सेवा करके ठीक करो, इनको अच्छा करो, प्रभु ये दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, किंतु हम प्रभु को सेवा में नियुक्त कर सकते हैं। किंतु जिसके सेवा में हम नियुक्त कर रहे हैं, वो क्या मेरा आत्मकल्याणकारी है, या चिरकाल मेरे उपकार करेगा, या चिरकाल मेरे साथ रहेगा, या मेरे को आगे बढ़ा देगा? किंतु हम हाड़ मांस के चमड़ा के अंदर में ऐसा आ सकते हैं, मन के अंदर में ऐसा आ सकते हैं, हमारा चेतना खत्म, चेतना खो बैठते हैं, किंतु शिवोन्मुख इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा हो सकता है। शास्त्र ने बताया, देखो एक जड़ शब्द है, एक शब्द सामान्य कहते हैं उसको, और एक शब्द ब्रह्म है। भगवान के नाम और मंत्र ये शब्द ब्रह्म है। तो आनंदमयम ब्रह्म, आनंद ब्रह्म, भूमि व सुखम, कृष्ण ही आनंद वस्तु, उसे पूर्णानंद है, वो पूर्णानंद विग्रह, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, भगवान स्वयं पूर्ण आनंद विग्रह है, आनंद ब्रह्म। नहीं तो और कहीं जाकर के किसी की पूजा पाठ करके उपासना करके वो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकता। न जलानंद मिलेगा, न ब्रह्मानंद मिलेगा, न मोक्षानंद मिलेगा, न चिदानंद, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि किसी पास कुछ है ही नहीं, तो देगा क्या? उसकी पूजा पाठ करके उनके चापुर जी खुशामंदी करके जीवन के समय नष्ट कर दी, किंतु वो दे क्या सकता है? क्या है? कर्म देगा, उस तमगुनी है तमगुण देगा, रजगुनी है रजगुण देगा, लोग अंधे लंगड़े बीमार भिखारी जो उनकी सेवा को सोचते हैं बहुमान करते, बहुत बड़ा सेवा है, उनकी यदि सेवा किया तो क्या फल देंगे, क्या आशीर्वाद देंगे, क्या कृपा करेंगे? हैं, लंगड़े हैं तो बोलेंगे तू भी लंगड़ा हो जा, अंधा है तो बोलेंगे अंधा हो जा, नहीं तो बीमार है तो बोले तू भी बीमार हो जा, इतना ही दे सकता है, बोले हमारी बीमारी ले ले, तो क्या देगा? तो इससे आनंदम ब्रह्म, भगवान के शब्द ब्रह्म का सहारा ले ले, आश्रय ले ले मंत्र का नाम का, और उनका ध्यान कीर्तन स्मरण मनन अनुशीलन करते हैं तो पूर्णानंद की प्राप्ति होगा। कहते हैं प्रभुपाद जी, न अल्पे सुखमस्ति, क्षुद्र वस्तु है उसमें सुख कहाँ है? कहते जड़ानंद खनिक तुच्छ आपत मनोरम, जड़ानंद में पूर्णता नहीं है, आशा नहीं मिट सकता है। बृहद वस्तु ब्रह्म वस्तु वो सब सुखों के आकर हैं। ऐसे आनंद मूर्ति कृष्ण के सेवा के द्वारा ही पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है, अन्य तो कोई उपाय नहीं है। कहते हैं जी जगदीश्वर जगत के जितने सेवा के उपकरण हैं, यदि हम सब उनको समर्पण कर दें तो हमारे लिए कमी पड़ जाएगा, टूटा पड़ जाएगा? कहते ऐसा नहीं होता। सब सेवा के उपकरण प्रभु को समर्पण करे या प्रभु को प्रभु के नज़र में डाले तो हमारे कल्याण के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कितना ज़रूरत है वो अपने आप ही व्यवस्था करके दे देंगे। नहीं तो हम तो हमारा तो बुद्धि नहीं, छोटा बच्चा है वो यदि देखा कीड़े मकोड़े है उसको भी पकड़ के मुँह में डाल देगा, उसको ज्ञान ही नहीं है। कुछ भी मिलता है प्लास्टिक फास्टिक कपड़े मपड़े सब मुँह में डाल देता है, ज्ञान ही नहीं है। यदि उसके अभिभावक देखता है अरे क्या क्या मुँह में दे रहा है, हटाएगा कोई अच्छा चीज़ देगा उसको? तो कहते हैं जब भगवान को हम कुछ समर्पण करते हैं या सेवा के उपकरण सब कुछ उनको देते हैं तो वो हमारे जितना ज़रूरत है जो कल्याणकारी है सब हमारे लिए व्यवस्था करेंगे, तो हमारा भूख बुद्धि चला जाएगा, अपराध भी नहीं होगा और संसार के जाला से मरना भी नहीं होगा। और नहीं तो हम स्वतंत्र हैं, जो कुछ है हम प्रभु को प्रभु की सेवा के उपकरण प्रभु के लिए समर्पण नहीं करते न व्यवहार करते, इसके लिए वो संसार के जाला से हम जलते हैं मरते हैं। क्योंकि पहले तो अपना स्वरूप भूल चुका, बद्ध हो गया आबद्ध हो गया, इसलिए भूख बांछा किसके जल इंद्रियों के तत्पर हो गया, उनकी प्रीति के लिए सब काम करना है, हमारा मन खुश रहे हमारा तन खुश रहे, और नहीं तो हम इतना नहीं कर सकते, हम हमारे पास सामर्थ्य नहीं है। किंतु हम जब सचेष्ट होते हैं चेष्टा करते हैं भगवान के वस्तु को भगवान को समर्पण करना चाहते हैं तो फिर चिंता नहीं रहता है, दुख नहीं रहता, कष्ट नहीं रहता। कहते हैं आत्मा कि परमात्मा का सेवक है या जो कुछ हम अभी पानी खुराक खाना पीना ग्रहण करते ये हमारा आत्मा खा रहा है, आत्मा चाहता है। कोई बोलता है हमारा आत्मा चाहता है, आत्मा आज मेरे को बोला आज सिंगड़ा समोसा खाना है, आज कचौड़ी खाना है, आत्मा ने बोला मालपुआ खाना है, आत्मा ने बोला मुझे आज सुंदर शरबत पीना है, तो आत्मा को परमात्मा को देना चाहिए। कहते हैं आत्मा तो तुम्हारे सेवक नहीं है, आत्मा परमात्मा का सेवक है। नहीं नहीं परमात्मा ने बोला मुझे आज उनको लस्सी देना चाहिए, तो ठीक है परमात्मा को लस्सी दे देते हैं, तुम छूना नहीं। वो एक बाबा जी गोवर्धन में भजन करता है, रोज परिक्रमा देता है, कभी कभी दंडवती भी लगाता है। तो एक दिन बरसात हो रहा है तो मन में सोचा आज गिरिराज को बाटी बनाएंगे चूरमा बनाएंगे, और दाल बाटी चूरमा ठाकुर जी को देंगे, आज ठंडा के दिन है गर्म गर्म भोग लगाएंगे। ब्रजवासी बाबा जी को बड़ा आदर करते हैं, गया कंडा मंके ले आया, आटा मंके ले आया, घी ले आया, दूध ले आया, दाल ले आया, सब तैयारी करना शुरू कर दी। सुबह से करते 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 संध्या हो गया, क्योंकि तो बाटी सेकने बहुत टाइम लगता है। तो बनाया, शाम हो गया, भोग लगाया और सोचा मैंने सारा दिन ही बाटी और चूरमा में लगा दिया, भगवान के लिए तो लगा गया, ठीक है तो भगवान को दे दिया। अब खुद क्या किया, राख को ले लिया और गोविंद कुंड का जल ले लिया, राख में घोल करके पानी में पी लिया। बोले बाटी चूरमा तो मेरे लिए नहीं, वो तो भगवान के लिए हैं, तो ठीक है अब तुम्हारा इच्छा हुई ना बाटी खाने की चूरमा खाने की, तो राख घोल के पी लिया। तो कहते ये सोचना चाहिए हम परमात्मा के सेवक है, आत्मा की इंद्रियों के सेवक है। जो कुछ मिलता है हम इंद्रियों को देते हैं। परमात्मा को दे देने से उनको छीनने का हक तो मेरा है नहीं, दे दिया दे दिया। अब क्या है? फल आया, फूल आया, मिठाई आया, कितने, ये सबसे बड़ा तपस्या है, साधन है। हम लोग जब मथुरा मठ में रहते थे तो गुरु जी के पास तो देखते थे घर में रोज दिन कितने पैकेट मिठाई आया, कितना काजू बादाम पिस्ता, कितने फल। तो गुरु जी कभी कभी बोलते इसको ले जाओ और मंदिर में दे दो भोग लगा के और प्रसाद बंटवा देना सब। तो एक सेवक था, रोज दिन उसमें से अच्छे अच्छे काजू, अच्छे अच्छे बादाम पिस्ता और जितने मेवा और मिठाई, जो काजू की बर्फी, बड़े बड़े चीज़ वो देख के पैर से छांट छूट करके लेके छिपा देता और खुद खाता। ऐसे खाना नहीं आएगा, क्यों नहीं, नहीं नहीं हमारा भूख नहीं है। तो बोलते अरे कब तक भूखे रहेगा भाई, कुछ तो खा ले। नहीं 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 मेरा तो ठीक नहीं है ये, ओ ये सब खाता काजू पिस्ता बादाम मैं सारा दिन छिप छिप कर खा लेता। किंतु परिणाम क्या हुआ, इतना बीमार, इस बीमारी के कोई खत्म हद नहीं। तो गुरुजी परेशान, सेवक है क्या करे, कभी बुखार, कभी एलर्जी, कभी खुद पेट खराब, कभी टाइफाइड, कभी चेचक निकल आया। 12 महीने इतनी बीमारी, गुरुजी डॉक्टर देखा 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 50, 60, 70, 80 डॉक्टर दिखा दिया, कुछ नहीं होता है। तो एक दिन मेरे को बोलता है आप इतना दिन भर भगते हैं और करते हैं तो आपको बीमारी नहीं पकड़ता है, तो मेरे को बोलो ना मैं कैसे ठीक हो जाऊँ। तो मैं बोला एक ही उपाय है ठीक होने का, यदि गुरु जी के घर का कोई वस्तु आप कभी छुएंगे नहीं तो ठीक हो जाएंगे। क्योंकि गुरु के सेवा के लिए भोग के लिए देते हैं, भगवान के भोग के लिए, गुरु जी के लिए भक्त देते हैं, तो आप उसको लेकर के सब हड़प लेते हैं, लेकर खूब खाते रहते हैं, तो क्या होगा, इसका परिणाम कौन भोगेगा, दुखद हो, कितना दुखदायी है ये। लोग कितना आरती से भगवान के लिए, गुरु के लिए अपना कुछ देते हैं, तो आज सब कुछ आप पहचाना चाहते हैं। तो एक दिन, दो दिन, तीन दिन हो गया, अब लाइन में आके प्रसाद पाता है, सबके साथ बैठता है। तो गुरु जी एक दिन बोले क्यों भाई आजकल हमारे घर में आता नहीं यार, कुछ लेते आता नहीं है, ऐसे सोचते थे गुरु जी को मालूम नहीं है, तखत के नीचे सब रहता है तो उनको कुछ मालूम नहीं। जगन्नाथ देव बाबा जी की कथा गुरु जी सुनाने लग गए। जगन्नाथ देव आँख के पर्दे उठाते नहीं, 140 साल हो गया उम्र, तो 5 साल प्रणामी देते, सेवक को बोलते कलश में डाल दे, तो डाल दिया, उसमें तिजोरी तो था नहीं, घड़े कलश था मिट्टी का, भर दे। तो बाबा जी महाराज बोलते देख अब घड़े में 1000 रुपया हो गया। अच्छा बाबा जी महाराज आपको मालूम है मैं 1000 हो गया, तो जा रसगुल्ला खरीद करके ला और कुछ मिठाई ले आना, फल ले आना। तो ठीक है, बाबा जी लोग सोचे आज तो बाबा जी महाराज बड़ा उदार हो गया, रसगुल्ला भी देंगे और मिठाई भी देंगे, फल भी देंगे। तो लाया सेवक और भोग लगाया, लगा दिया, बोले जा गायों को, कुत्तों को और जितने ब्रजवासी हैं सबको बांटे जा। बोले बाबा जी महाराज इन लोगों को नहीं देना है, भक्तों को, बोले नहीं किसी को मत देना। बाबा जी भजन करने आए, जीवा के लालची बन करके सारा जीवन चाटनी चाटेगा, भगवत स्मरण करेगा कि गुरु भोग ही बनेगा, गुरु के पास आता है हमारे भोग के लिए या हमारे इंद्रियों के लिए, भगवान के लिए। औरों का, भक्तों का किसी का अधिकार नहीं है क्या, सबका अधिकार है, भगवान जिसको देंगे, तो तुम्हारे को देंगे तो भगवान अपने आप देंगे। अब तो गुरु जी बोलते तू अब कुछ लेता नहीं, तो बोलते नहीं क्यों, तो मेरा नाम ले लिया, उन्होंने बोल दिया आपके चीज़ नहीं लेना चाहिए, आपके चीज़ खाने से बीमार होना होता है, आपके चीज़ में लोग देते हैं आपके लिए, भगवान के लिए, तो मैं नहीं ले सकता। तो बोले अच्छा मैं देता हूँ ले ले, नहीं लूँगा क्यों, मैंने बहुत भुगत चुका, अब नहीं लूँगा, मैं बहुत डर गया, अब घबरा गया, मेरी बीमारी ठीक नहीं होता है, वो इतना कष्ट पाता हूँ। तो कुछ दिनों में ये इतना पतला था, ए मोटा ताजा हो गया कि सुंदर हो गया, बढ़िया चकाचक हो गया है। और फिर क्या हुआ है? फिर तो खुद ही गुरु बन गए है। अब शिष्य लोग गुरु को देते हैं तो गुरु भोग लगाता है, भगवान का खुद पा लेता है, शिष्य को भी बांट देता है। किंतु ये व्यापार ज़्यादा दिन चलता नहीं। हमारा उसमें आसक्ति मोह लोभ नहीं होना चाहिए। जतलाभे संतोष ए मत आचार्य भक्ति धर्म पोष। जितने जरूरत है भगवान कृपा करके तो डायरेक्ट तो देते नहीं, क्योंकि भक्त लोग तो कृपालु दयालु हैं, कुछ तो दे देंगे, नहीं देंगे मत दो। किंतु अपने हाथ से उठा लिया चोरों की तरह, जो 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 चीज़ अच्छा चीज़ है सब हमने ले ली और भूसा और लोग खाएंगे। इससे पहले इससे नियम नहीं था, सब एक साथ बैठते तो परिवेशन करते थे, परिवेशन करने वाला उसमें अपने रुचि के अनुसार नहीं खा सकते। जो सबके लिए मिलेगा हमारे लिए सबके लिए एक्स्ट्रा मिलेगा। और प्रसाद आ गया तो जो अच्छा है उसको तो खा लिया और बाकी डस्टबिन में फेंक दिया, ऐसा भी नहीं होता था, कभी ऐसा नहीं। प्रसाद तो प्रसाद है भगवान का, इतना सा लिया तो इतना ही स्वीकार करना है, हैं? उसको हम अवज्ञा करेंगे फेंक देंगे? किसी एक समय बॉम्बे में शाम प्रभुपाद अपने लठिया टिक टिक करके टहलते थे तो प्रसाद महल के बाहर डस्टबिन है, ताज लाठिया टिक टिक करके उधर जा रहे हैं। सब लोग प्रभुपाद गुरुदेव किधर जा रहे हैं, किसी कुछ बोल नहीं रहे, चुपचाप चुपचाप करके डस्टबिन के पास गया। क्या देखा? कूड़ेदानी में अनाप शनाप कितनी प्रसाद फेंक दिया है। ले लेते हैं इतना सारा, खा नहीं सकते तो फेंक दे दिया। वो जा करके डस्टबिन में हाथ दे करके उसमें उठाया, उठा करके प्रणाम करके स्तुति कर रहे हैं। अज्ञ अनभिज्ञ तत्ज्ञ, प्रसाद का ज्ञान नहीं, इन लोगों ने कितना अनादर किया। जन्म जन्मांतर के बाद थोड़ा सौभाग्य मिला था, सुयोग मिला था भगवत प्रसाद ग्रहण करने की, आज उसको अवज्ञा करके अनादर करके फेंक दिया। इनके जन्म में तो फिर कुछ मिलना नहीं है, कहाँ रेगिस्तान में जाएंगे, कहाँ पानी के अंदर में जाएंगे, भोजन पानी भी नहीं मिले, ये किसी का भोजन बन जाएंगे। ओहो आप इनको क्षमा करो, वहाँ से लेके अपने मुंह में डाल दिया और शर्माते लगा लिया, आप इन अनभिज्ञों को क्षमा करो। लोगों ने फोटो बनाया, उठाया और प्रसाद महल में लगा दिया। प्रसाद सर्वदुखा नाम, प्रसाद ये सर्वदुखा नाम हानि रूप हो जाते। महाप्रसाद सब दुखों को दूर कर सकते हैं, किंतु हम प्रसाद बुद्धि तो करें, हमारा भोग बुद्धि जाता नहीं है। हमें अच्छा लगता है चाट पकौड़ी तो हम चाट पकौड़ी ले ली। वो गोस्वामी महाराज थे इमलीतला में गोड़े संघ के जो आचार्य, पहले तो प्रभुपाद के निकट, उनका नाम था अपराकृत प्रभु गोस्वामी महाराज। महाप्रसाद भक्तों ने परिवेशन कर दी, कभी आँख भी नहीं खोला, प्रणाम किया, स्तुति किया, सब ले लिया, एक साथ में मिला लिया, खा लिया, उठ के चल दिया। थाली को भी मेरे गुरु महाराज को मैंने खुद देखा, प्रसाद पाया, थाली को भी धो लिया, उसको भी धो के पानी से पी लिया। इतना चीज़ कभी अनादर अवज्ञा नहीं। कहते दे तो ईश्व बिनु हेतु सनहि, कृपापूर्वक भगवान ने कितना कृपा करके आज सुजोग दिया है भगवान का अधरामृत ग्रहण करने की। किंतु हम वो अधरामृत ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, हमें इंद्रिय तुषण करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए रुचिकर। कभी कभी जगन्नाथ जी के प्रसाद पाते समय नियम है, उसमें और कुछ मिला नहीं सकते हैं। कोई नमक ले लेगा, मिर्ची ले लेगा, नींबू ले लेगा, हैं उसमें घी डाल देगा, या रोटी खीर के साथ मिला खाएगा, ब्रेड खाएगा मिला करके, ऐसा नहीं कर सकते। इसे भाग्यहीन कहते हैं, परमात्मा का सेवा तो किया नहीं आत्मा, और कृष्ण सेवा धर्म है, उनका सेवा तो छोड़ दिया, अभी भोग करने में पहुंच गया। आत्मा तो भोगी नहीं है, वो भोग के लिए व्यस्त तो कैसे होगी? आत्मा तो भोग के लिए व्यस्त तो होते नहीं है, लेकिन मन ही इस समय भोक्ता के रूप में कार्य कर रहा है। मन ही इंद्रियों के लिए बोलता, मैं तेरे को ला के दूंगा, मेरा बात मान। अरे इतना सामान है उठा करके जितना जरूरत ले ले, ये चोरी नहीं है। मन ऐसे ही हमें फुसलाता है, तुम्हें चाहिए ले लो, गर्मी के दिन है, फ्रिज में पानी है, ठाकुर जी के लिए बर्फ है, आइसक्रीम है, तो तुम भी तो सेवक ही हो, तुम्हारे हृदय में भी तो परमात्मा विराजमान है। ये छटपटा रहा है परमात्मा आत्मा, तो इनको दे दो। मन ऐसे दुष्ट है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल। मैं इतना दुष्ट, इसे प्रभुपाद सर ठाकुर जी ने एक कीर्तन लिखा, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, प्रतिष्ठार तरे निर्जन घरे तब हरिनाम केवल कोईत, कनक कामिनी प्रतिष्ठा बागिनी छाड़ी आसी जा रे सही तो वैष्णव, तुम्हार कनक भोगेर जनक कनकेर दारे शिव माधव, कामिनीर काम नहे तब धाम ताहर मालिक केवल जादव। प्रभुपाद इसे वो मन के समझाने के लिए कितने बड़ा कीर्तन लिखा, प्रत्येक चीज इसे कहते मन इस समय आत्मा बन के बैठा है, वो इंद्रियों के लिए आदेश निर्देश देता है बुद्धि को। बुद्धि दुष्ट बुद्धि, स्त्री दुष्ट स्त्री, उनकी बातें सुन करके इंद्रियों को पालन करने जाता है, किंतु इंद्रियां वस्तु को ग्रहण करके सकुशल रह सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है? कभी संभव नहीं है। इसे कहते हैं भगवान आत्मा कभी भोग के लिए व्यस्त तो नहीं होता, मन ही भोगता है, ऐसा भोग के लिए चेष्टा कर रहा है, किंतु ये भोगवृत्ति आत्मवृत्ति के आवरण कर देता है। जब भोगवृत्ति प्रबल होता है तो आत्मवृत्ति घस गया काम से, और जब भगवान के आत्मा परमात्मा की सेवा में है तो शरीर यात्रा निर्वाह के लिए जब जैसा यथालाभ संतोष यही मत आचार्य भक्ति धर्म पुरुष, जब जैसे जो कुछ मिल जाता है उसी से प्रसन्न हो, सम्मान करके आदर करके ग्रहण करते हैं तो तो आत्मवृत्ति आवरण नहीं होता होता है। नहीं तो हम यदि भोगवृत्ति इंद्रियों के मन की बातें सुन करके चलते हैं, भक्तिम ठाकुर जी ने लिखा कि मन हमारा बड़ा चंचल, क्या कर रहा है, आज मुझे रसगुल्ला खाना है, कितना भी समझाए वो मानता ही नहीं है, कहीं से रसगुल्ला आके मिल गया ना, बड़ा खुश हो गया, हमारे भगवान ने हमारे मन की बात जान ली, रसगुल्ला भेज दिया, अब तो मुझे खाना है। कहते हैं उस समय धिक्कार देते हुए ग्लानी के साथ भगवान को देखे ग्रहण कर लो, तो ऐसे कुछ दिनों में तुम्हारा वृत्ति सुधर जाएगा, बदल जाएगा, गर्णीय विचार से ये ग्रहणयोग्य नहीं है, किंतु फिर भी मैं डाल रहा हूँ, क्षमा करना प्रभु, क्योंकि हम अपने इंद्रियों को संभाल नहीं पा रहे। तो कहते हैं कुछ समय में भगवत शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, मन परिवर्तन हो जाएगा। इससे भोगवृत्ति आत्मवृत्ति को आवरण करने वाला है, और यदि मन ही भोक्ता हो गया तो इंद्रियों को पालन पोषण करने के लिए सचेष्ट होता है, किंतु उसके द्वारा इंद्रियां बड़े दुखदायी हो जाता है। भगवान सच्चिदानंद विग्रह वो निराकार नहीं है, किंतु भगवान का जड़ शरीर भी नहीं है, और उनका देह देही में भेद भी नहीं है, वो सब कुछ देखते हैं, हम कर क्या रहे हैं, उनकी आंखें बहुत सर्वत्र सब कुछ देखते हैं समझते हैं, हम अपने को सेवक कह के ओ गुरु जी कथा में कहते थे, देखो एक गुरु थे, अपने चेले को बोला ए चार पैसा ले जाना, बाजार में जाके रसगुल्ला ले आना, बोले गुरु जी ठीक है, वो चार पैसे में कितना मिलेगा, तो चार तो चार पैसे में मिलता है, ठीक है। तो दुकान गया, क्यों देख सुन कर रहना, सड़े गले मत लाइयो, अच्छा ले ना। तो रसगुल्ला चार ले लिया, सोचता है अच्छा है बुरा है देख तो लूँ एक, नहीं तो गुरु जी तो डांटेंगे जाने से। तो एक खा लिया, तो देखा तो एक खा लिया, बड़ा अच्छा बड़ा स्वादिष्ट। तो गुरु जी तो चार ले जाएंगे तो दो तो गुरु जी खाते हैं, दो मुझे देते ही हैं, तो एक मेरा हिस्सा है उसको भी खा लिया। तो सोचते हैं इतना स्वादिष्ट रसगुल्ला मैं लेके कैसे जाऊँ। मैं ले जाते रहते लालच आ गया, सोचते हैं गुरु को कहूँगा गुरु जी आप तो हमारे हृदय में विराजमान हैं, आप अलग थोड़े ही हैं, मैं और आप तो कोई अलग अलग नहीं कभी। मैं ओम गुरवे नमः, गुरुदेव आप स्वीकार कर लो, तीसरा खा लिया। तो एक लेके जा रहा है, जो यदि कहते गुरु जी यदि पूछते हैं भाई आप तीन रसगुल्ला कहाँ गया, बोले गुरुदेव गुरुदेवाय स्वाहा, उसको भी खा लिया। तो खा लिया तो आ गया, गुरुदेव पूछते हैं कहाँ गया भाई रसगुल्ला, तो मैं ही तो रसगुल्ला हूँ गुरुदेव, हैं रस और गुल्ला तो मैं ही बन गया, क्यों मैंने खा लिया तो मैं ही रसगुल्ला बन गया, अब आप मुझे खा लो चाट लो देख लो सूंघ लो। घ्राण से अर्ध भोजन हम, घ्राण से तो अर्ध भोजन हो जाएगा, और थोड़ा मेरे को चाट लोगे तो पूरा भोजन हो जाएगा। तो जैसे गुरु ऐसे चेला, नरक में दोनों ठेलम ठेला। बंगाली में कहते हैं गुरु गुरु गोबर और चेला चीला। तो इसलिए भगवान सब कुछ देखते हैं, अंतर्जामी हैं, वो उनका आँखें बहुत है, कहाँ छिपाएंगे भाई, कहाँ तक छिपाएंगे, वो सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं, और उसका परिणाम फल किसको मिलेगा। ये सोचो हम गलत करते हैं तो सरकार पकड़ करके कैद करके जेल में डाल देते हैं सुधारने के लिए, हम तो जेल के अंदर है ही है, एक जेल नहीं दो दो आवरणात्मिका विक्षेपात्मिका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर ये जेल के अंदर फंस गए, और सारा दिन इसके अंदर में यातना मिल रहा है, कभी कुछ दर्द कभी कुछ विरोधी कभी कुछ, सब समय यंत्रणा मिल रहा है, और फिर और दर्दनाक हैं, फिर और चोरी, उसके बाद छीना चोरी हैं, गलती तो एक करके एक भोग रहा हूँ और फिर चोरी और करें इनके लिए, झूठ बोल के बेईमानी करके छल करके कपट करके इसको पूर्ति करेंगे, कोई देखता नहीं, परमात्मा का बहुत आँख है, ये ताला बंद करने से उनका दरवाजा बंद नहीं होता, वो सब देखते हैं कितना आया कहाँ जा रहा है कौन ले रहा है कौन भोग कर रहा है सब देखते हैं। इसके लिए फल किसी को नहीं मिलेगा, अपन को ही। तो नाम के में रुचि नहीं, कथा में रुचि नहीं, हरि सेवा में रुचि नहीं, उन्नति है नहीं, आनंद है नहीं, खुश नहीं है, बोलते बहुत कुछ हो गया हमारे सर के ऊपर हो गया, हम अब सहन नहीं कर सकते, अब तो हमें कहीं और एकांत में ब्रेक डाउन करके रेस्ट लेना है, स्वतंत्र आज़ादी चलेगा वहाँ। अरे बाबा जहाँ जाएगा भगवान की नज़र सब जगह में है, कहाँ जाएगा, कर्म बनाएगा तो क्या फल कौन भोगेगा, क्यों नहीं सुधर जाता। इसे यदि शुद्ध रूप से चला ठीक, चोरी सीना चोरी नहीं, पानी की जरूरत है नहीं रहा जा रहा है, भगवान को समर्पण किया तभी नहीं रहा जा रहा है, लेना जरूरी है, तो किसी कोई भक्तों को पूछ करके तो थोड़ा आदेश ले करके तो लो, भगवान से आदेश ले करके तो लो, स्वतंत्र तो तुम मत बनो, क्योंकि स्वतंत्रता से हम कुछ भी करते हैं उसका फल तो अपन को भोगना है। इसलिए जब गुरुवर्ग वैष्णवजन भगवान के परिकर नहीं है, क्या अच्छा बुरा क्या हमारा कल्याण होगा हम जानते नहीं हैं, हम तो स्वेच्छा से घर गृहस्थल क्या करते हैं, कभी रबड़ी ले आया कभी राजमा ले आया कभी छोले ले आया कभी भटूर खाए खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, और दो दिन बाद लाइन देकर हॉस्पिटल में। मथुरा मठ में गुरु जी कहते थे देखो ये छोले राजमा राबड़ी रसगुल्ला खीर हैं जितना आता है जितना ग्रहण किया है तो उसको ये सामने हॉस्पिटल है ना उसके बेड में जाकर पता पड़ जाएगा तो वही होता दो चार दिन बाद कोई ना कोई कोई ना कोई हॉस्पिटल के बेड में पहुंच गया सलाइन चल रहा है और इंजेक्शन लग रहा है ग्लूकोज चढ़ा जा रहा है क्यों यदि गुरु वैष्णव हमारे आत्मकल्याणकारी है हितकारी है वो जो देते हैं अमृत है परमामृत है जज्ञाशिष्टा सिनुसंतु भुंजन्ते सर्वकिलमिषई भजन्ति ते अहम पापा जे पर भजन्ति आत्मकारणात् बड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म विचार है भगवान का देखे लेना चाहिए किंतु भगवान के देखे जो लेंगे भगवान के तो और भी भक्त है उनका तो प्रिय और भी है इसलिए भगवान भक्तजन जो देते हैं किंचित मात्र भी वो भी परम अमृत है बच्चे ने कहा है नहीं तो क्या होगा हम अपने देह को पालन करने के लिए और उसको खुश रखने के लिए हम सब कुछ ग्रहण कर लेंगे किंतु हम स्वतंत्रता के कारण यह शरीर के अंदर में सामर्थ्य तो नहीं है कि सब चीज़ को पचा ले हजम कर ले और खुश रहे नहीं कर सकता इससे कहते भगवान स्वराट वस्तु ये भगवान निरपेक्ष है किसी मदद की अपेक्षा नहीं करते स्वतंत्र है स्वप्रकाश है उनका आँख कान सब चिन्मय अचिन्मय है जड़ नहीं है सब सब पूर्ण है सब इंद्रियों से सब कार्य कर सकते हैं भगवान कर्मकांड का आदेश उपदेश नहीं देते जीवों के कल्याण कैसे परमंगल होगा इसलिए भगवान के कथा और भगवान के सेवा की परिचय स्वरूप भक्त लोग विराजमान हैं वो भी निरपेक्ष हैं वो किसी की अपेक्षा नहीं करते न तो किसी के द्वारा खुशामुदी और चापलूसी में वशीभूत हो जाते हैं जैसे क्या करेंगे कुछ अच्छा चीज़ व्यवस्था किया बनाया तो गुरुजी इसको ले लो गुरुजी ले लो अच्छा चीज़ है तो गुरुजी ने देख लिया मुख में लगा दिया सूंघ लिया हैं ले जाओ देख लिया नहीं गुरुजी गुरुजी आप ले लो गुरुजी कहते हैं मैं ले लिया जाओ सब भक्तों को दे दो किंतु हम क्या चाहते हैं कि नहीं हम भगवान को वश में कर लेंगे गुरु को वश में कर लेंगे भक्त को वश में कर लेंगे किंतु यह परमार्थ का मार्ग नहीं है हैं भगवान की कथा कीर्तन करो कीर्तनकारियों की हैं जो आज्ञावाही और आदेश उपदेश अनुज्ञा पालन करने की कोशिश करो उस पर शुद्ध भक्ति की बात जहाँ है वहाँ ही ग्रहण करना है भागवत सुनना है पढ़ना है विचार करना है शुद्ध ज्ञान शुद्ध विभाग शुद्ध भक्ति एक तात्पर्य पर है इसमें इंद्र तृप्ति नहीं है उसके बदले में भगवत सेवा की बात है सुख और दुख दोनों भिन्न वस्तु हैं सुख के लिए घूमते हैं तो दुख आ जाता है और इससे फल की आकांक्षा मत करो कर्मकांड मुक्त पुरुषों के लिए नहीं है कर्म का फल कभी अच्छा होगा कभी बुरा होगा और कहते हैं भागवत को छोड़ करके अन्य ग्रंथ कर्म मार्ग की है ज्ञान मार्ग का है सुख दुख के जड़ है जन्म मृत्यु के बाध्य कर देते हैं धर्म अर्थ मिल सकता है मुक्ति मिल सकता है किंतु भगवान की उपासना और भगवान की सेवा नहीं है इसे अन्य शास्त्र को अनुसरण करने की भी जरूरत नहीं है कहते योग्य द्वारा भगवान का भजन नहीं होता अनिमा अलगिमा अष्टादश सिद्धि अठारह प्रकार सिद्धि मिल सकता है हाँ। और मोक्षगामी की उससे मुक्ति की बात कर सकते हैं संसार सुख दुख से छुट्टी मिल सकता है किंतु भोक्ता अभिमान नहीं जाएगा इसे कर्म ज्ञान और योग मार्ग जो ग्रहण कर रहे हैं, भागवत कहते हैं तुमने भूल किया, गलत किया, भक्ति करो सहज ही तुम्हें सब कुछ लाभ होगा। इस जीवन में पर जन्म में सब समय सुखी रहोगे। भक्ति आत्मा का निर्मल वृत्ति है, उसके द्वारा स्वस्थ रहोगे, अनायसी पृथ्वी पार करके गोलोक वृंदावन के मार्ग में चल पहुँच जाओगे। यदि इस वस्तु में आसक्ति है, जड़ जगत के जड़ वस्तु में उसके प्रति बड़ा आकर्षण है, तो हम ये पृथ्वी को छोड़ करके और भोगमय चेतनामय शरीर और कर्म मार्ग से हम अतिक्रम नहीं कर सकते। इसलिए कहते प्रभुपाद जी, शुद्ध सत्य वस्तु त्रिसत्य वास्तव सत्य वस्तु एकमात्र भगवान है, भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए वो चिंता करो, उनके परिकरों के निकट प्रार्थना करो, शुद्ध बुद्धि उदित हो, क्योंकि भगवान ही शुद्ध बुद्धि को दे सकते हैं, और कोई देगा नहीं। भगवान कहते हैं गीता जी में, अर्जुन तुम्हारा बुद्धि शुद्ध नहीं है, किंतु तेषाम सत्ययुक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियुगम तांग जनम अमुपयांती थी। सत्य यदि प्रतियुक्त होकर के कोई भजन करता है, मैं उसको बुद्धियुग मैं खुद प्रदान करता हूँ, यह बुद्धि कोई नहीं दे सकता है। और बुद्धि देगा तो बोध लाभ करेगा, अर्थात ज्ञानी होगा, गुणी होगा, योग्यता आएगा, तो उसको कहते हैं बुद्ध। और जिसकी बुद्धि नहीं है, अज्ञ है, बोध नहीं है, अनुभव नहीं है, तो बुद्ध है कभी नहीं बन सकता। इसलिए सत्य वस्तु त्रिसत्य और त्रिकाल सत्य वो भगवान श्री कृष्ण है। वो खुद ही कहते हैं मैं बुद्धि योग प्रदान करूँगा, ये मेरा मेरे बिना कोई दे नहीं सकता। इसलिए कहते कैसे हमारा कल्याण हो सकता है, यदि कलयुग में सपरिकर गौरहरी पंचतत्व हमारे पूजा के वस्तु है। उसमें पहले भी हमने सुना भक्त रूप, भक्त स्वरूप, भक्त अवतार, भक्त शक्ति, भक्त सब मिलकर के अभी भक्तों के निकट पहुंच गए और भक्ति प्राप्त करने के लिए उसी में ही शांति है, परा शांति है। इसलिए भक्तों को छोड़कर के भगवान की सेवा नहीं हो सका, और गुरु वैष्णव की सेवा के बिना कोई कल्याण का मार्ग और है ही नहीं। इसे गुरु वैष्णव को अनुकरण नहीं, अनुसरण करो। अनुकरण करके हम वंचित हो जाते हैं, थक जाते हैं और कर भी नहीं सकते। इसे अनुसरण करना है, किंतु आउल बाउल ये लोग अनुकरण करने लग जाता है। कहते हैं सब कृष्ण की गोपी है तो हम भी गोपी बन गए, तो वो उसमें कहते हैं बंगाली में कहते एक फूल गोभी है एक बंद गोभी है, तो हिंदी में कहते गोभी, बंगाली में कॉफी, तो बोले बांधा कॉफी फूल कॉफी, और ये हिंदी में बोलेगा बांधा गोभी और फूल गोभी। तो गुरु जी कहते हैं अब ये गोभी और कॉफी नहीं, ये गोपी बन गया कि मैं गोपी बन गया तुम गोप बन गया। बोलते ये सब अनुकरण करने जाकर के ये सब अपसंप्रदाय, कोई ना तो गोभी बनेगा ना तो कोई गोभी बनेगा, ऐसा नहीं होता। दासानुदास बनने के लिए सोचो तो भी कल्याण है। कहते हैं गौर सुंदर के कोई उपदेश नहीं है, क्या उपदेश है, वैष्णव के कोई कृत्य नहीं है, केवल भगवान को पुकारो, भगवान को बुलाओ, भगवान के नाम का स्मरण करो, एकमात्र कल्याण नाम कीर्तन में है, और कुछ चेष्टा करने की जरूरत नहीं। गुरुदेव भगवान के प्रियतम हैं, तो उनके निकट सेवक है, भक्त हैं, और कृष्ण सेवा में गुरुदेव सबको नियुक्त करते हैं। और गौर सुंदर ऐसे सब गुरुओं के गुरु हैं। उन्होंने क्या बतलाया गौर सुंदर ने, गुरु भगवान से अभिन्न होने पर भी भगवत भक्तों के लिए प्रधान तत्व के रूप में गुरुतत्व का अवस्थान है। गुरुदेव कृष्ण पृष्ठ है और गुरुदेव वैष्णव में श्रेष्ठ है। भक्तराज सेवक भगवान सेवा विग्रह आश्रय विग्रह कृष्ण के समान विषय विग्रह या भक्त तत्व नहीं है। इसलिए क्योंकि वो अखंड वस्तु भगवान की सेवा में सबसे व्यस्त है और उनके अनुगत्य के द्वारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि यदि वैष्णव है गुरु हैं भगवत सेवा नहीं करता है भगवान का नाम कीर्तन नहीं करता है तो ऐसे गुरु को तत्क्षणात् परित्यग करो, जरूरत नहीं है। अवैष्णव उपदिष्टन मंत्र निरंग बजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहयत वैष्णवाद गुरु। यदि मंत्र दीक्षा भी ले ली गुरु यदि भजन नहीं करता माला मंत्र नहीं करता भगवान की सेवा नहीं करता तो अवैष्णव गुरु को तत्क्षणात् त्याग करो, पुनः दीक्षा ग्रहण करो। इससे वैष्णव कैसे होंगे, कृष्णाश्रित कृष्ण के सेवक, सेवक का अभिमान अकिंचन निष्किंचन है, कोई जगत के वस्तु उनको आकृष्ट नहीं कर सकता और लोभ के द्वारा किसी वस्तु के प्रति अपने को नोछावर नहीं करेगा। भगवान के सेवा के अलावा मोहिनी माया बहुरूपिणी माया के कारागार में जाकर के अपना मूल जीव नहीं बनेगा। इसलिए नित्यकाल जो लोग भगवान की सेवा करते हैं वही वैष्णव है। भगवान की कथाओं का इतर अलावा कुछ श्रवण नहीं करते, भगवान की चिंता के बिना कुछ चिंतन नहीं करते, खाना पीना में अपने भोग में कभी भी रमे हुए नहीं है। यदि भगवान कथा को कीर्तन नहीं करते न सुनते तो ऐसे होकर अनुगत्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवत प्रसाद जैसे वितरणीय है ऐसे भगवत प्रसाद ग्रहणीय है। भगवान कथा कीर्तन करना है, भगवान कथा श्रवण करना है, वंचित नहीं होना है, नहीं तो बहुत प्रकार की असुविधा आ जाएगा, बहुत क्लेश आ जाएगा, इतना कष्ट आएगा जिसकी कोई हिसाब नहीं। इससे कर्ता अभिमान नहीं सेवक अभिमान तो कोई चिंता नहीं, मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ मैं परिचालक हूँ ये कुविचार आकर के आत्मसात न करे। साधु निकट जा करके ये पहले सीखो, मैं कर्ता नहीं मैं सेव्य नहीं हूँ मैं सेवक हूँ, भगवान की सेवा ही हमारा धर्म है। इसे कर्म मार्ग से निकल करके सत्कर्मी बनने की जरूरत नहीं है, किसी के प्रति के द्वारा आकर्षण के अंदर में जाकर के घुसने की जरूरत नहीं है, उसमें मंगल भी नहीं शांति भी नहीं और निष्कृति भी नहीं संसार से। इसे भक्तजन भगवान की सेवा में हमें समर्पण करने का उनको सामर्थ्य है। हम देवता पशु पक्षी कहीं भी जन्म ले लें तो एक बार यदि हम भगवान की सेवा में अपने को समर्पण कर दिया तो कभी हम वंचित नहीं होंगे। और दूसरे कथाओं में रुचि करने की जरूरत नहीं। कहते हैं कितने बार हम लोगों ने पत्थर जन्म लिया, कितने बार पेड़ पौधे हुए, कितने बार पिता पुत्र हुए, कितने बार क्या क्या काम किया, समाज संस्कार समाज गठन कितना कार्य की, किंतु हम लोग कितने सजे हैं किंतु बड़े बड़े कार्य कर करके कितना माया के दास्य गुलामी किए हैं, किंतु यह सब विमुखता है, उसके द्वारा कल्याण नहीं हो सकता है। अब हम लोग कल सुनेंगे गौर प्रमाणे।
Hare Hare He Govinda Gopinath Kripa Kare Rakha Nijapada Hari Hari Kripa Kare Rakha Nijapada Kama Krodha Chaya Jana Laufira Nanastane Bisaya Bunjaya Nana Mata Bisaya Bunjaya Nana Mata Hoi Yamaya Radas Korinanaya Bhilas Tomara Smarana Gela Dure Prabhu tomara smarana gela dure Artha lava ashe kapata vaishnava veshe Artha labha e ashe kapata vaishnava veshe Brahmiya bulaya ghare ghare Brahmiya bulaya ghare ghare Anega dukera bare loye chila brajapure Kripa Dora Galaya Bandiya Kripa Dora Galaya Bandiya Daiva Maya Valat Kare Kasaya Se Dore Daiva Maya Valat Kare Kasaya Se Dore Bye. bhavakupa dilakadariya bhavakupa dilakadariya Punajari kripa kare e janara keshe dhari Prabhu punajari kripa kare e janara keshe dhari Tane atula braja dhame Tane atula braja dhame Tabe sede kiye vala na tu va parana gela Tabe sede kiye vala na tu va parana Kohe dina dasa narottame Prabhu kohe dina dasa narottame Eva Rama Karadaya He Govinda He Gopinath Eva Rama Karadaya He Govinda, He Gopinath, Eva Rama Karadaya. Sicharane Asraidya, Eva Rama Karadaya. Aya parana guchaya eva rama karadaya Krishna name ruchiriya eva rama karadaya Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Radhe, Jaya Krishna. Thaku Narottama, Thaku Narottama, Narottama, Thaku Narottama. Taku Narottama, Taku Narottama, Narottama, Taku Narottama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Bhakta Bhandav Srila Guru Deva. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Satchinandan, Jai Gaura Hari, Satchinandan, Jai Gaura Hari. Anitai Gaura Hari Ba. Nitai Gaur Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Hari Bal, Jai Nitai Gaur Mananda Hari Bal.